अनुवाद और तात्पर्य है कि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक सौंदर्य से सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे तथा उनके बड़े बड़े स्तन तेजी से चलने के कारण हिल रहे थे। तात्पर्य ग्वाले तथा ग्वालिनी के देहातों में प्राकृतिक जीवन बिताते थे और क्रिया में सहज नारी सौंदर्य विकसित होता था, जिससे उनके नितंब और स्तन बड़े बड़े होते थे। क्योंकि आधुनिक सभ्यता में स्त्रियां प्राकृतिक जीवन नहीं बिताती, इसलिए उनके नितंब तथा स्तन प्राकृतिक ढंग से बढ़ते नहीं। बनावटी जीवन बिताने से स्त्रियां ने अपना प्राकृतिक सौंदर्य को खो दिया है। भले ही वे अपने को स्वतंत्र या भौतिक सभ्यता के पुरस्कार क्यों न मानती हो, ग्रामीण स्त्रियों का यह विवरण प्राकृतिक जीवन और गर्भित समाज के कृत्रिम जीवन के अंतर का एक स्पष्ट उदाहरण है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में जहाँ नग्न सौंदर्य को कल्बों तथा दुकानों में तथा आम विज्ञापन के लिए सहज ही खरीदा जा सकता है। भले भी शब्द बतलाता है कि स्त्रियाँ स्वर्ण मुद्राएं, रत्न गणित मालाएं, सुंदर वस्त्र, दुर्वा चंदन लेप, पुष्प मालाएं तथा स्वर्ण के थाली में विविध भेंट लेकर गई थी। ऐसी भेंटे बलि कहलाती है। परितम जगमो शब्द सूचित करता है कि ग्रामीण स्त्रियां कितनी जल्दी समझ गई कि माता यशोदा ने कृष्ण नामक अद्भुत बालक को जन्म दिया और वे कितनी प्रसन्न थी। ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानेन्द्रमहाराया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन गुरवे स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं नवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांतन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यास्तहं प्रपद्ये। सूर्य सत समकांति अरुण वसन सुबलि प्रकांड देह कमल लोचन। तो क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद पांचवा अध्याय, कल हमने जो चर्चा सुना वो 8 नंबर के श्लोक पर था और 9 नंबर के श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य भावार्थ नहीं दिए, इसलिए आज 10 नंबर का श्लोक है। तो 9 नंबर का श्लोक इस प्रकार है, गोप्य च आकर्ण्य मुदिता सुतौ उद्भवम आत्मनम सुतम उद्भवम आत्मनम उयेशाम चक्रु वस्त्र आकल्प अंजन आदि भी। अनुवाद इस प्रकार है, गोपिया यह सुनकर परम प्रसन्न थी कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः वे उपयुक्त वस्त्र गहनों काजल आदि से अपने को सजाने लगी। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। भगवान कृष्ण का जन्म के बाद दूसरे दिन का यह प्रसंग चल रहा है, नवमी के दिन। सर्वप्रथम नंद महाराज ने जात कर्म संस्कार किए, सभी ब्राह्मणों को बुलाकर और बहुत से दान भी दिए। नियुत शब्द आया इस श्लोक में, आगे श्लोक हमने सुना है उसमें 20 लाख गाय, नियुत मतलब 20 लाख गाय नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया। और दान देने से सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं कि दान देने से व्यक्ति का धन शुद्ध होता है। तो इसी प्रकार नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया। फिर बाद में और श्लोक में आता है कि पूरे गोकुल में घर घर में सजाया गया, एक श्लोक में उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और सजाने की विधि थी वस्त्र से, आम का पत्तों से और फूलों से, तो तीन चीजों से पूरा गोकुल घर घर सजाया गया था। और एक श्लोक में वर्णन आता है, फिर बाद में घर सजाने के बाद व्रजवासियों ने क्या किया, गाय भेड़ आदि भी सबको सजाए। और कैसे सजाए, हल्दी में सुगंधित तेल डाल के उसमें कुछ डिजाइन हाथ किया और जो गाय के सिंग थे बैल के सिंग थे उसमें सुवर्ण पत्र का आभूषण डाले और गले में भी सुवर्ण या सोने का आभूषण दिए। फिर बाद में अगले वाला श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गायों को बैलों को सजाने के बाद सभी गोप नंद महाराज आदि सभी वो भी अपने आप को सजाए, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, सुंदर पगड़ी भी पहना और सुंदर मोजड़ी या जो भी बिहार के गांव में पहनते उस प्रकार पहने। इन गोपों को सुंदर तरीके से वो सज गए। फिर बाद में भी तीन श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो व्रज की स्त्रियां गोपियां थी वो किस तरह अपने आप को तैयार किए सजाए उसका वर्णन तीन श्लोक में किया है, 9 नंबर, 10 नंबर और अगले आने वाला 11 नंबर। तीन श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस व्रज क्रिया का वर्णन करते हैं। तो परम विरक्त सुडामणि श्री सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही वो इस भौतिक जगत में फंस न जाए उस भय से वो घर से निकल गए और निकलने के बाद तुरंत जंगल की तरफ और चल पड़े। तो उस जंगल की तरफ चलते और उनके पिता व्यास देव जी उनके पुत्र पुत्र तन्मय थी ऐसे पुत्र पुत्र करके उनके पीछे भी चलने लगे। और जाते जाते एक सरोवर आया जहाँ स्त्रियाँ स्नान कर रही थी, तो उस स्त्रियाँ स्नान करती हुई इस सरोवर से किनारे से सुखदेव गोस्वामी निकल गए। तो इस परम विरक्त सुडामणि श्री सुखदेव गोस्वामी स्त्रियों की तरफ देखने उनमें कोई विकार ही नहीं था, जन्म होते ही वो घर से निकल के पूरा पूर्ण रूप से इस विकास से रहित थे। तो उस सुखदेव गोस्वामी इस तीन श्लोक में जो व्रज की स्त्रियां हैं उनका वर्णन करते हैं। तो कितना महत्व होगा इन व्रज की स्त्रियां का या व्रजवासी का, जैसे विरक्त सुडामणि सुखदेव गोस्वामी तो बारीक से वर्णन करते हैं। तो आज के श्लोक में जो है, तो उन व्रज स्त्रियां ने सुना कि यशोदा जो नंद महाराज की गृहिणी जो पत्नी थी उसने एक बालक को जन्म दिया। सामान्यतया ऐसी बात पूरा ब्रज में या गोकुल में फैल गए कि यशोदा मैया ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन स्वाभाविक कृष्ण प्रेम होने के कारण सभी को अपने आप पता चल गया कि वो निश्चित रूप से हमारे जो प्राण है, हमारे जो हमारे इष्ट है कृष्ण, उनका ही जन्म हुआ है। तो अपने आप उनके हृदय में प्रेम भर गया और प्रेम भरने के कारण वो जान गई, क्योंकि वो नित्य 11 नंबर श्लोक में श्री प्रभुपाद भावार्थ में तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्रज स्त्रिया थी वो भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर के सनातन पार्षद है। तो पार्षद होने के कारण वो जान के निश्चित रूप से हमारे ये प्राणनाथ आए हैं, उनका ही जन्म हुआ है। तो इसलिए वो भाव में आकर अपने आप को सजाने लगी, क्योंकि उनका दर्शन करने के लिए जाना है ना व्रज में, नंद बाबा के घर में। तो अपने आप सजाने लगे, तो सजाते सजाते फिर बाद में ये 10 नंबर के श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, को कुमकुम पुष्प के जो एकदम खिला हुआ नहीं, कमल की तरह छोटा छोटा कली की तरह जो फूल था, ऐसे पुष्पों से वो श्रृंगार किए और उनका कुमकुम जैसा रंग था, और उनकी तुलना करते हैं उसके मुख से कि जो सुंदर, अति सुंदर, असाधारण सुंदर, जिनकी तुलना कोई कर नहीं सकती, ऐसी वो व्रज की स्त्रिया का मुख शोभित हो रहे थे। और इसी तरह वो शोभित होकर वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए और सुवर्ण और हीरा रत्न जड़ित मालाएं भी धारण किए, और साथ साथ में कुछ दर्शन के लिए जाना है भगवान का या अपने प्राणनाथ को, या अपने वात्सल्य भाव में है तो पुत्र रूप में दर्शन के लिए जाना है तो उनके लिए कुछ भेंट लेकर जाना है। तो भेंट के लिए वो भी तैयार किया, प्लेट में जो थाली थी, जो प्लेट थी पूरा सुवर्ण की थी, सोने की थाली में कई सारे भेंट उसमें रखी। और वहाँ एक आचार्य अपनी टीका में कहते हैं कि वो चाहती थी पूरा संपूर्ण वो सर्वस्व अर्पण कर दे, लेकिन वो समाचार जैसे ही सुनी तो जल्दबाजी में उतना वो समर्पण नहीं कर सकी, तो जितना हो सके उतना वो थाली में भरा और वो लेकर चल दिए, जल्दी 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 से वो चल गए, चलने लगी। और कहाँ? नंद बाबा के घर तरफ, जो कृष्ण का जन्म हुआ था उनका दर्शन के लिए। तो चलते समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनका पयोधर हिल रहे थे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चल रहे थे स्पीड में, तो उनका नितंब और पयोधर कंपित हो रहे थे, और इसी कंपित होने के कारण वो जल्दी जल्दी चल रहे थे। तो इसी प्रसंग को प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि देहाती या गांव में जो स्वाभाविक स्त्री का सुंदरता थी उसमें कोई ब्यूटी पार्लर या कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियों को अपनी जो स्वाभाविक सुंदरता से खो दिया है, और फिर से वो प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वाभाविक या जो उनका सौंदर्य है वो फिर वापस प्रयास करने से वो नहीं आता है, जो स्वाभाविक रहता है वो गांव में जो सुंदरता रहती है वो इस आधुनिक समाज में जो कितना भी प्रयास करे वो नहीं आता है, कितना भी वो बाल काला करे या लिपस्टिक लगाए या कुछ भी करे, लेकिन वो जो सुंदर या स्वाभाविक तरीके से जो रहता है वो कभी वापस नहीं आता। तो इसी प्रकार इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस व्रज स्त्रिया का, तो कितना महत्वपूर्ण स्त्री और व्रजवासी रहेंगे जो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। तो इसका पूर्ण रूप से हमें जानकारी चाहिए तो बृहद भागवतम में पूर्ण रूप से जो भगवान के इस व्रजवासी कितने परम श्रेष्ठ भक्त है उनका निरूपण किया है, और व्रज धाम का कितनी महिमा है उनका वर्णन हुआ है बृहद भागवतम, जो हमारे सनातन गोस्वामी ने उस पर विस्तार से टीका लिखा है, भक्तों ने जिसने अध्ययन किया है वो जानते हैं। इसमें दो प्रसंग दिए गए हैं, एक प्रसंग है भक्तों की महिमा और दूसरा प्रसंग है धाम की महिमा। 14 अध्याय में इस ग्रंथ की रचना है बृहद भागवतम, उसमें 7 अध्याय में भक्तों की महिमा बताई गई है और 7 अध्याय में धाम की महिमा है। तो किस तरह वो व्रज सर्वश्रेष्ठ है या व्रजवासी श्रेष्ठ है उसका वर्णन करते हुए श्री परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को इस कथा को रहस्य बताते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद भागवतम कथा सुनाने के बाद वहां से चले गए गंगा नदी के तट पर से, तब परीक्षित महाराज संपूर्ण रूप से कृष्ण स्मरण में भावुक होकर स्मरण करने लगे, क्योंकि उनका अंतिम दिन था इस भौतिक जगत से भगवत धाम जाने के लिए। तब उनकी माता उत्तरा वहां दौड़ती दौड़ती आई और परीक्षित महाराज को कहने लगी कि तुमने जो 7 दिन में जो कथा सुनी है उनका विस्तार से मुझे वर्णन सुना और सार रूप में बताओ, जो तुमने 7 दिन में जो सुना उसका सार रूप में मुझे बताओ। तब परीक्षित महाराज ने पहले तो मना किया, नहीं नहीं मुझे तो अभी स्मरण करना है जो मैंने सुना है उनका, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अभी स्मरण करना है। लेकिन बाद में फिर परीक्षित महाराज सोचने लगे कि नहीं नहीं जो सुना है श्रवण किया है उसका कीर्तन भी करना चाहिए। तो इसलिए माता उत्तरा का निवेदन सुनकर परीक्षित महाराज इस कथा को कहते हैं जो सनातन गोस्वामी ने विस्तार से उसका वर्णन किया है और उसकी पत्ति का लिखा है। तो प्रसंग शुरुआत करते हैं श्री परीक्षित महाराज, एक समय प्रयागराज में कई मुनियों एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने के साथ साथ एक स्नान किए जो त्रिवेणी संगम में। स्नान करने के बाद जब आपस में बैठे और चर्चा करने लगे और मुनियों सब अपने आप को कहने लगे, नहीं नहीं आप भगवान के बहुत कृपा पात्र हैं ताकि हम इस प्रयागराज में आए हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दूसरा मुनि कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कृपा पात्र हूँ, आप कृपा पात्र हैं, आपकी वजह से हमको यह लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह सब अपने आप को दूसरे को श्रेष्ठतम बताते और अपने आप को हीन बताते थे। तो उसी समय श्री नारद जी वहाँ आए, तो नारद जी आए तो सब मुनियों ने कहा कि हम ये चर्चा हो रहा है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ या भगवान विष्णु के कृपा पात्र कौन है। तो नारद जी सोचने लगे वहाँ, तो सोचते उसी समय एक ब्राह्मण आया धनी, वो ब्राह्मण आया धनी और आकर उसने स्नान किया त्रिवेणी संगम में। स्नान करने के बाद उनके पास एक शालिग्राम था, तो शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उनको भोग लगाया, भोग लगाने के बाद कीर्तन किया बहुत। कीर्तन करने के बाद उस भोग को जो अन्य प्रसाद बनाया था उसमें डालकर पूरे वहाँ जो थे इस तट पर उसको सबको प्रसाद के रूप में बांटा, और बांटने के बाद जो भी कुछ बचा था वो अन्य प्राणी थे उनमें बांटा। फिर बाद में थोड़ा कुछ बचा उस बाप ब्राह्मण ने और उनके परिवार ने वो ग्रहण किया। इस प्रसंग को श्री नारद मुनि देख रहे थे, तो इस प्रसंग को देखने के बाद नारद मुनि उनके पास गए और कहने लगे, और वो मुनि ने कहा वास्तव में जो भगवान विष्णु का जो कृपा पात्र कोई है तो इस ब्राह्मण है, क्योंकि उसने सुंदर रूप से शालिग्राम की सेवा की और जो प्रसाद था सबको बांटा और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा वो उसने ग्रहण किया, तो वास्तव में उन पर कृपा है भगवान की। तो श्री नारद मुनि उस ब्राह्मण के पास गए और कहा कि वास्तव में भगवान की इस जगत में आप पर ही कृपा है ताकि आप इतने भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं मुझ में कुछ भाव नहीं है, कुछ सेवा भी इतना नहीं कर पाता हूँ मैं, मेरा जितना सामर्थ्य उतना ही मैंने सेवा किया, लेकिन वास्तव में जो भगवान की कृपा है इस दक्षिण भारत में जो राजा अभी है उन पर है, वो वैभव से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, लक्ष्मीनारायण की सेवा करते हैं, उन पर भगवान की बहुत कृपा है, वही कृपा पात्र है, आप उनसे मिलिए। तब नारद मुनि वहाँ ब्राह्मण से वो दक्षिण भारत जाते हैं और उस राजा के पास, तो राजा के पास वो विस्तार से वर्णन से एक एक अध्याय में उनका वर्णन है बृहद भागवतम में, हम तो संक्षेप में जा रहे हैं। तो उस राजा के पास श्री नारद मुनि गए और नारद मुनि जाकर देखा तो राजा ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया नारद मुनि को और एक आसन दिया, उसमें बैठा है और नारद मुनि का शरण धोवन किया। फिर बाद में कहा कि कहिए गुरुवर आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि वास्तव में मैंने जो आपको देखा जो भगवान की सेवा आप कर रहे थे भगवान विष्णु की, बहुत अद्भुत और वैभव से सेवा करते हैं और आपके राज्य में जितने भी प्रजा हैं वो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं आपके प्रभाव से, तो वास्तव में आप पर ही भगवान की कृपा है, आप ही कृपा पात्र हैं भगवान की इस जगत में।
तब वो उस राजा कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पर कुछ कृपा नहीं है, मैं क्या थोड़ा बहुत सेवा करता हूँ, वास्तव में कृपा तो स्वर्ग में इंद्र पर है जो भगवान की नित्य रूप से सेवा करते हैं, जहाँ साक्षात विराजते हैं उपेंद्र जो उनका छोटा भाई रूप लेकर भगवान विष्णु, तो वास्तव में इंद्र के ऊपर भगवान की कृपा है और वही कृपा पात्र हैं, आप उनसे जाकर मिलिए। तब नारद मुनि वहाँ से, ये दो लीला इस भौतिक जगत का बताते हैं, फिर बाद में स्वर्ग में जाते हैं नारद मुनि, और इस स्वर्ग में जाने के बाद श्री इंद्र से मिलते हैं और इंद्र के वैभव से भगवान उपेंद्र जो वामन है एक रूप से तो सुतल में वो निवास करते हैं, बलि महाराज की गेट की पर रक्षा करते हैं, लेकिन एक रूप से इंद्र का छोटा भाई बनकर स्वर्ग में भी निवास करते हैं। तो वैभव रूप से पूर्ण रूप से भगवान उपेंद्र की सेवा करते हुए नारद ने देखा कि इंद्र वो भाव से बहुत भाव से और पूर्ण वैभव से सेवा करते हैं, तो वास्तव में भगवान विष्णु की कृपा तो इंद्र पर ही है। तो कहते हैं नारद मुनि कि वास्तव में भगवान की कृपा तो आप पर ही है कि आप इतना साक्षात भगवान की सेवा करते हैं और आप ही कृपा पात्र हैं भगवान विष्णु के। तब इंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं मुझ पर कुछ कृपा नहीं है, अगर मुझ पर कृपा होती तो मैं भगवान के शरण में कितने अपराध किए, जब इस ब्रज लीला में वो ब्रज धाम में जब लीला कर रहे थे तब मैंने आदेश दिया था उस सामंत वर्षा को बरसाने के लिए और पूरा ब्रज डुबाने का प्रयास किया था, और अगर मेरे पर कृपा होती तो मेरे मन में ऐसा भाव ही नहीं आते थे, और पूरा ब्रज को डुबाने का मैंने प्रयास किया, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पर भगवान की कोई कृपा नहीं है, और इतना ही नहीं इतने बात समझने के बाद फिर भी मुझे बुद्धि नहीं आई, फिर बाद में भगवान जब द्वारका लीला कर रहे थे तब आए रुक्मणी के साथ सत्य भामा के साथ, जब पारिजाति वृक्ष मांगा तो मैंने मना किया, उनके साथ युद्ध भी किया कृष्ण के साथ, तो वास्तव में मुझ पर कृपा नहीं है, अगर कृपा होती तो ऐसा कार्य मुझसे कभी नहीं होता। तो वास्तव में जो कृपा भगवान की है तो ब्रह्मा जी पर है भगवान की कृपा, मुझ पर कुछ कृपा नहीं है, ये विस्तार से वर्णन है, हम जा रहे जल्दी जल्दी। तो फिर नारद मुनि के शरणों में प्रार्थना करते कि नहीं वास्तव में कृपा तो ब्रह्मा जी पर है, मुझ पर कुछ कृपा नहीं है, आप ब्रह्मा जी से मिलिए। तब नारद जी जाते हैं सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं क्योंकि हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और पूरा सृष्टि का वो संचालन भी करते हैं। तो नारद जी वहाँ गए तो ब्रह्मा जी का ध्यान प्रणाम किया नारद जी ने, क्योंकि वो पिता है उनके, प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी को कहते हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा तो आप पर ही है, आप इतना भगवान का चिंतन करते हैं और साथ साथ में सारा सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं, तो ये भगवान की कृपा नहीं होती तो ये सारा हो क्या मैनेजमेंट हो सकता है या चिंतन हो सकता है, दोनों साथ नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा है आप पर, आप ये कृपा पात्र है इसलिए आप ऐसा दोनों कार्य कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझ पर कुछ कृपा नहीं है भगवान की, अगर मेरे पर कृपा होती तो मैं भगवान के शरणों में अपराध कभी नहीं करता, भगवान के शरणों में तो क्या उनके जो सखा है नित्य उन पर शरणों में अपराध कर दिया, जो मैं भगवान को समझ नहीं पाया और उनके बछड़े को बाल बालों को हरण करके उनका परीक्षा करने का साहस किया मैंने, तो इसलिए मुझ पर कृपा नहीं है, बिल्कुल कृपा नहीं है, वास्तव में जो कृपा है तो भगवान शिव पर है, भगवान की कृपा आप उनसे मिलिए। तब नारद जी वहाँ सत्यलोक से कैलाश में जाते हैं, तो कैलाश में जाने के भगवान शिव को प्रणाम करते हैं दोनों भाई हैं, तो प्रणाम करने के बाद शिव जी को कहते हैं और शिव जी भगवान कृष्ण का या राम का चिंतन करते हुए महामंत्र का कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे, और कैलाश में जाकर श्री नारद ने कहा कि भगवान की कृपा आप पर ही है ये सारे जगत में देखा जाए तो, क्योंकि आप नित्य भगवान का स्मरण कीर्तन करते हैं और कीर्तन की कई कितनी महिमा है उस स्थान पर, कीर्तन की महिमा बहुत सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो वास्तव में भगवान की कृपा आप पर ही है, मुझे लगता कि आपके अलावा और किसी पर कृपा भगवान की नहीं। तब शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझ पर कृपा नहीं है बिल्कुल, अगर मुझ पर कृपा होती तो मैं द्वारका में भगवान जो निवास कर रहे थे तब उनके साथ युद्ध नहीं करते। तो बाणासुर का प्रसंग आया तब भगवान बाणासुर के पक्ष लिए भगवान के साथ युद्ध किए थे। तो बोला मेरे पर कोई कृपा नहीं है भगवान की, अगर कृपा होती तो मैं भगवान के साथ कभी युद्ध नहीं करता। तो वास्तव में अगर कृपा कोई है किसी पर इस जगत में, श्री प्रहलाद महाराज पर है भगवान की कृपा, क्योंकि उनके लिए भगवान ने अवतार धारण किए थे। तो वास्तव में प्रहलाद महाराज पर भगवान की असीम कृपा है, वही कृपा पात्र है, आप उनसे मिलिए। तब नारद मुनि वहाँ से जाते हैं श्री प्रहलाद महाराज के पास, सूतल लोक जहाँ भोले महाराज निवास करते वहीं पर प्रहलाद महाराज भी निवास करते हैं। तब प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, वो तो प्रहलाद महाराज के गुरु है नारद जी, तो प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद उनका स्वागत किए, आसन से बैठाए और माला अर्पण किए। फिर कहा गुरुदेव आपका प्रयोजन क्या है बताइए। तब नारद मुनि कहते हैं कि वास्तव में इस तीनों लोक में मैं जाकर आया, वास्तव में भगवान की कृपा तो तुम्हारे पर ही है, क्योंकि तुम नित्य भगवान का स्मरण करते हो और स्मरण करते करते भगवान विष्णु ने तुम्हें आदेश दिया कि तुम इस भौतिक जगत में रहो और मेरे भक्ति का, मेरे नाम का, नवदा भक्ति का प्रचार करो, इसलिए भगवान की कृपा तो आप पर ही है। तब नारद मुनि तरफ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है। जो भगवान ने मेरे लिए जन्म लेके बाहर से दिखता है लेकिन वास्तव में उसने मेरे लिए जन्म नहीं लिया, नरसिंह के रूप में मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, वो तो ब्रह्मा का वसन रखने के लिए वो प्रकट हुए थे। जो उसने वसन दिए थे मेरे पिताजी को, उसका पालन करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो कितनी देर, थोड़े ही समय तक मुझे दर्शन दिए, फिर बाद में वो चले गए और मुझे इस भौतिक जगत में सड़ने के लिए छोड़ दिए। और मैं अभी तक ये संभाल रहा हूँ और इस संभाल मुझे चिंतन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझ पर भी भगवान की कृपा नहीं है। तब प्रहलाद महाराज कहते वास्तव में जो कृपा कोई पात्र है तो श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी भगवान की कृपा पात्र जो हमेशा भगवान राम के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं नित्य रूप से, आप उनसे मिलिए। तब नारद जी जाते हैं श्री हनुमान जी के पास, हनुमान जी का स्थान जहाँ नित्य निवास करते हैं, किम पुरुष स्थान, जो श्रीमद् भागवत में पांचवें स्कंध में उसका वर्णन आता है। भगवान श्री राम की वहाँ नित्य रूप से सेवा हनुमान जी महाराज करते हैं सीताराम की। तो वही श्री विग्रह बनाकर श्री हनुमान जी महाराज सीताराम लक्ष्मण का विग्रह बनाकर उनकी सेवा करते हैं। तो उस सेवा का भाव देखकर नारद मुनि समझ गए, कहे हनुमान जी को कि वास्तव में मैं सब जगह पर आया लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है भगवान की कृपा आप पर ही है और किसी पर नहीं, आप ही कृपा पात्र हैं भगवान विष्णु के और भगवान राम के, तो मुझे आपके अलावा और कोई नहीं दिखता है कि भगवान के कृपा पात्र और कोई है। तब हनुमान जी महाराज कहते कि नहीं नहीं, मुझ पर भगवान की कोई कृपा नहीं है, अगर मुझ पर कृपा होती तो जब भगवान राम इस भौतिक जगत में जब त्रेता युग में आए और लीला कर रहे थे और लीला समाप्त करने के बाद सारे अयोध्यावासी को वो अपने धाम सांके धाम में ले गए और मुझे अकेले इधर छोड़ दिए, अगर उसकी कृपा मुझ पर होती तो मुझे साथ में ले जाते, लेकिन वास्तव में श्री राम की मेरे पर कृपा नहीं है। लेकिन भगवान राम ने कहा था कि आप इस जगत में रहो और मेरे नाम का और मेरे भक्ति का प्रचार करो हनुमान जी महाराज, लेकिन अपने आप को दैन्य प्रकट करने के लिए श्री हनुमान महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की कृपा कुछ भी नहीं है मेरे पर, और वास्तव में जिस कृपा पात्र कोई है तो वो पांडव लोक है, युधिष्ठिर महाराज खास करके, तो उनके लिए भगवान बारम्बार अपने द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर आते हैं और छः महीना तक वहाँ निवास करते, उनको संग देते थे भगवान कृष्ण, तो वास्तव में कृपा पात्र कोई है तो वो पांडव है, आप उनसे मिलिए। तब नारद मुनि जाते हैं श्री पांडवों के साथ, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन भीम सहदेव नकुल को मिलते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को, कि वास्तव में भगवान की कृपा पात्र या भगवान की कृपा आप पर ही है, क्योंकि जो अपनी द्वारका में जब भगवान लीला करते 16108 पटराने को छोड़कर आपके पास बारंबार दौड़ दौड़ कर आते हैं और आप वास्तव में भगवान की कृपा आप पर ही है, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान की कृपा हम पर नहीं है, अगर हमारे पर भगवान की कृपा होती तो हमारे पास हमारे साथ जो दुर्घटना हुई वो कभी नहीं होती। और साथ साथ में कई अपने आप को धैन्य बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि महाभारत के युद्ध में कितने लोगों का जानहानि हुआ वो हमारे वजह से हुआ है, और भगवान को अगर भगवान की कृपा हम पर रहती तो ऐसा हमसे कभी नहीं होता, कई जीवों की हत्या हमने की है, इसलिए वास्तव में हमारे पर भगवान की कृपा नहीं है। अगर भगवान की कृपा कोई है किसी पर या कोई कृपा पात्र है तो यादव गण है, वही भगवान के नित्य साक्षी है, वही उनका नित्य संग प्राप्त करते हैं यादव यादवगण, आप उनसे मिलिए, भगवान की कृपा पात्र वही है। तब नारद मुनि वहाँ से हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका में आते हैं, तो द्वारका में आकर उग्रसेन महाराज आदि सभी यादव को मिलते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा तो आप पर ही है, साक्षात द्वारकाधीश आपके साथ आप उनका रोज संग प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो आपके अलावा इस जगत में कृपा पात्र भगवान के कोई नहीं है, आप पर ही है। तब अगर उग्रसेन महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं हम पर कोई कृपा नहीं है, अगर हमारे पर कृपा होती तो कृष्ण या द्वारकाधीश नित्य रूप से यहाँ निवास करते थे, लेकिन वो तो कभी कभी इधर कम समय रहते और ज़्यादा करके हस्तिनापुरी चले जाते हैं, और कई ऐसे हमारे से अपराध भी हो गए हैं तो वास्तव में हमारे पर कृपा नहीं है। उग्रसेन महाराज वास्तव में अगर कोई किसी पर कृपा है तो उद्धव पर है, क्योंकि उद्धव उनका मित्र है सखा है और उनका हमेशा उनके शरणों की सेवा करता है, तो वास्तव में पूर्ण रूप से देखा जाए तो श्री उद्धव पर भगवान की कृपा है, आप उनसे मिलिए। तब नारद जी जाते हैं श्री उद्धव का जहाँ निवास करते उस स्थान पर, तब नारद जी जाकर उद्धव को प्रणाम करते हैं और उद्धव भी आलिंगन करते हैं दोनों को, और उद्धव जी को कहते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण की और द्वारकाधीश की कृपा तुम पर है, तो तुम हमेशा उनका संग प्राप्त करते हो और उनका वस्त्र आदि जो भी प्रसाद के रूप में जो भी होता है तुम ही ग्रहण करते हो, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण के जो भी वस्त्र भगवान कृष्ण के प्रसाद रूप में उनका वस्त्र ग्रहण करते हैं उद्धव जी, तो भगवान कृष्ण के बराबरी उद्धव जी दिखते थे। तब उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पर कुछ कृपा नहीं है भगवान की द्वारकाधीश की, तो अगर मेरे पर कृपा होती तो मैं इतना अभिमान मेरे ज्ञान में जो ज्ञान के कारण मुझ में जितना अभिमान आ गया था वो अभिमान कभी नहीं आता, और अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे व्रज में भेजा था और मैं उधर जाकर समझ गया कि मैं कितना अभिमानी हूँ, और उस बात का मुझे भी अभिमान था कि मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, और ज्ञान प्राप्त करके मुझे इतना अभिमान आ गया था, और इस अभिमान को हम देखते हैं तो उसके लगता है कि मुझ पर भगवान की कोई कृपा नहीं, अगर वास्तव में मैंने देखा उद्धव जी कहते हैं कि कृपा पात्र कोई है तो व्रज में व्रज गोपियाँ हैं उन पर भगवान की पूर्ण रूप से कृपा है, मैं उधर जाकर उस गोपियों से मिला तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ज्ञान की क्या वैल्यू है क्या है, और वास्तव में भगवान की कृपा पात्र कोई है तो व्रज की गोपियाँ हैं। तो पूरा परिभ्रमण करते करते श्री नारद मुनि व्रज में जाते हैं और वास्तव में वही सार है जो पूर्ण रूप से जो भगवान के कृपा पात्र है या भगवान को किस तरह सेवा करना है वो कोई जानते हैं पूर्ण रूप से, या शरणागत भाव किसी में है तो वो गोपियों का है, उस गोपियों का इधर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जो उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं कितनी महिमा है उस गोपियों की, जो इतने घूमते घूमते श्री नारद मुनि वहाँ तक पहुँचे उस गोपियों से मिले, तब नारद जी को वास्तव में पता चला कि नहीं नहीं भगवान की कृपा उन व्रज नारियों पर ही है, क्योंकि वो अपने आप कभी सुखी नहीं करना चाहती है, किस तरह भगवान कृष्ण श्याम सुंदर सुखी हो उसी में प्रयास में वो लगे रहते, अपने आप को कितना भी कष्ट हो कितना भी दुख हो वो सहन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है, और भगवान को किस तरह प्रसन्न करें उसी में वो प्रयास में रहती है। तो इसी प्रकार सब नारद मुनि ने सार निकाला कि नहीं, वास्तव में जो कोई कृपा पात्र है या भगवान की सेवा करने के कोई जो कोई कृपा पात्र है वो वास्तव में गोपिया है। तो इस पूरे कथा का सार सात अध्याय में इस प्रसंग को दिया है। श्री उत्तरा को श्री परीक्षित महाराज सुनाते हैं, तो विस्तार से उनका वर्णन है और इस पर सनातन गोस्वामी ने पूर्ण रूप से टीका लिखा है। तो सार यही है कि जो ब्रज प्रेम है वो कितना दुर्लभ है इस कथा से हमें मालूम पड़ता है, और इस दुर्लभ प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको आसानी से प्राप्त है। समझ रहे हैं ना बात, इतना घूम घूम के वहाँ जाना पड़ता है, वही कृष्ण प्रेम या गोपियों का प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है। जिस तरह बालक के हाथ में अमूल्य रत्न आ जाता है, उसी तरह हमारे ये हाथ में ये अमूल्य रत्न श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, जो गोपियों का प्रेम हम कल भी सुन रहे थे श्री भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का, कितना दुर्लभ है वो प्रेम प्राप्त करना। और आज भी सुबह में हमने सुना जो व्रज में जो लीला भगवान करते हैं राधा रानी और गोपियों के साथ, वो कितना दुर्लभ है और कितना महत्वपूर्ण है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, वही चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट हमें वो प्रदान कर दिए है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उसने आचार्य भी ऐसे भेजे ताकि हम कहीं भी स्थान पर रहे इस बॉम्बे जैसी नगरी में भी उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास हम कर सकते हैं श्री प्रभुपाद की कृपा से। तो इस चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य और साथ साथ में प्रभुपाद की कृपा से हमें ये प्राप्त होता है जो अमूल्य है, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उस ब्रज प्रेम को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा प्रसंग भी है ब्रज धाम का, वो भी इतने विस्तार से ब्रज धाम कितना महत्वपूर्ण है, तो दूसरा सात अध्याय में है। तो हम इस गोपियों का महत्व इस सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, हमें लगता है कि परम विरक्त सुरामणि स्त्रियों का इस तरह वर्णन करना, लेकिन यह कोई सामान्य बात नहीं है। जो ये भगवान की सनातन सेवक है, सनातन साथी या पार्षद है, उसी भाव से श्री सुखदेव गोस्वामी इसका तीन श्लोक में वर्णन करते हैं उन सुंदरता का, और उन किस तरह वो आभूषण पहनते हैं और किस तरह वो अपने अपने घर से निकले और नंद महाराज के घर पर जाने के लिए, और इतनी तेजी से जा रही थी, 11 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा और कल के श्लोक में, कि उनके बालों में उनके केशों में जो रियाणी गाय के फूल लगाए थे वो बिखर गए, क्योंकि वो उनके जल्दी जल्दी में वो बराबर ठीक से पहन भी नहीं पाई थी सब गोपियाँ, तो वो बिखरते हुए पूरे मार्ग में फूल ही फूल बिछा गए थे, इतनी गोपी आई थी। यहाँ तक लिखा है आचार्य ने 11 नंबर श्लोक में कि टीका में कि जो गोपियाँ थी खाली गोकुल की गोपियाँ नहीं आई थी, अनेक जो आजू बाजू में सब गांव थे, गांव में जब समाचार सुना तो सभी दौड़ दौड़ कर गांव में आई, गांव से आकर गोकुल में आई और फिर बाद में नंद महाराज के घर पर सब एकत्रित हुई, सब साथ में नहीं गई, एक एक आई तो एक एक गई ऐसा नहीं, सब नंद महाराज के आंगन में सभी गोपियाँ एकत्रित हुई, फिर बाद में एक साथ मिलकर दर्शन करने के लिए गई। तो इस बार इस प्रसंग से यदि हमें पता चलता है कि संघ से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, तो इसी तरह इस गोपियों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो इस भाव है जो इस रस है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से हमें इस बॉम्बे जैसी माया नगरी में भी हमें प्राप्त होता है, अगर हमारा प्रयास रहा तो, और इस प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। उनका प्राप्त करने का एक ही चाबी है, वह हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस महामंत्र कोई प्रेम से कोई जप करेगा तो निश्चित रूप से इस गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन जो गोलोक का प्रेम धन है वो प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक पर बोलने की मुझे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी इस ब्रज का महिमा कितना उच्च स्तर है उसको कुछ समझने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया उस बृहद भागवतम से। तो उसमें कुछ टूटे या कमी रह गए तो क्षमा कीजिए, तुझ समझ कर। और कोई प्रश्न है तो वनमाली प्रभु से पूछ सकते हैं इस बारे में, क्योंकि वनमाली प्रभु ये बृहद भागवतम पर अध्ययन किए हैं। कई बार उनका प्रवचन लेक्चर में उनका जिक्र आता है, इसलिए जो मैंने कहा उसके बारे में कोई प्रश्न है तो वनमाली प्रभु से पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की।